नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बिहार समेत 11 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। हरेक पोलिंग बूथ के लिए कार्ययोजना तैयार करने का दिया निर्देश। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। अगले 3 वर्षों में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और देश में अधिक रोजगार सृजन का वायदा। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी इंडी गठबंधन में शामिल। राजद ने अपने कोटे से 3 लोकसभा सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और पूर्वी चंपारण वीआईपी को दी। और लोकसभा चुनाव के 2रे चरण की 5 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच में 31 नामांकन पत्र रद्द किए गए। इच्छुक उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम ले सकते हैं वापस। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चयनित जिलों के निगम आयुक्तों और चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्रवार कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यनीतियां बनाने को कहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज नई दिल्ली में बिहार समेत 11 राज्यों के निगम आयुक्त और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पिछले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम रही थी। एक रिपोर्ट।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को इस प्रकार काम करने का निर्देश दिया है जिससे मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी से गौरवान्वित महसूस करें। उन्होंने ऐसे प्रयासों की अपील की है जिसमें लोग मतदान के लिए स्वयं प्रेरित हो। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कम मतदान वाले 215 ग्रामीण और 51 शहरी संसदीय क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने त्रिसूत्रीय रणनीति पर बल दिया। मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाना, लक्षित ढंग से मतदाताओं तक पहुंचना तथा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण पक्षों को शामिल करना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, नागपुर, पटना साहिब, लखनऊ और कानपुर के निगम आयुक्त तथा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित जिलों के चुनाव अधिकारी विचार विमर्श में शामिल हुए। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअली भाग लिया।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में घोषणा पत्र जारी किया। एक रिपोर्ट।
घोषणा पत्र में प्रतिदिन 400 रूपये की न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 1,00,000 रूपये, केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण का वायदा किया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना के वायदे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं। कांग्रेस ने अगले दशक में 23 करोड़ लोगों के जीवन में सुधार लाकर गरीबी समाप्त करने का भी वायदा किया है।
इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र पंच न्याय यानी न्याय के 5 स्तंभों पर आधारित है। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आज इंडी गठबंधन में शामिल हो गए। पटना स्थित राजद कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि मुकेश सहनी को राजद ने अपने कोटे से लोकसभा की 3 सीटें दी हैं। ये सीटें हैं झंझारपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण।
राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए और वो 3 सीटें पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है, ये फैसला हुआ है।
जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पटना में आयोजित समारोह में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। राजनीतिक हलकों में उन्हें समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। और आइए अब सुनते हैं नवादा संसदीय क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट।
2019 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार नवादा संसदीय क्षेत्र का चुनावी परिदृश्य बदला हुआ है। पिछली बार लोजपा के टिकट पर चंदन सिंह चुनाव जीते थे, इस बार एनडीए में सीट बंटवारे के तहत नवादा भाजपा के खाते में आई है। भाजपा के विवेक ठाकुर पहली बार इस संसदीय क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। राजद ने श्रवण कुशवाहा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। राजद के बागी विनोद यादव निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के रंजीत कुमार और निर्दलीय गुंजन सिंह ने चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इस सीट से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद के श्रवण कुशवाहा के बीच है। नवादा संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। नवादा, रजौली और गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र राजद के कब्जे में है। वहीं हिसुआ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही है, जबकि वारिसलीगंज से भाजपा और बरबीघा से जदयू के विधायक हैं। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को नवादा संसदीय क्षेत्र का मतदान होगा। इसे देखते हुए चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। सभी दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कुल 66 मामले दर्ज किए गए, वहीं 31 लाख रुपए से अधिक नकद जब्त किए गए। इसके अलावा 24,000 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है, वहीं 264 किलो से अधिक मादक पदार्थ भी बरामद किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIRNews Patna पर भी सुने जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 5 सीटों के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 31 नामांकन पत्र रद्द किए गए। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर संसदीय क्षेत्रों से 86 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे। अब इन क्षेत्रों में 55 उम्मीदवार रह गए हैं। सबसे अधिक 10 नामांकन पत्र कटिहार लोकसभा क्षेत्र में रद्द किए गए। वहीं बांका में 9, भागलपुर में 8 और पूर्णिया में 4 नामांकन पत्र रद्द हुए। किशनगंज में सभी 15 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद कटिहार से 10, पूर्णिया से 7, भागलपुर से 13, बांका से 10 और किशनगंज से 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इन सीटों के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है। मतदान 26 अप्रैल को होगा। और अब पेश है लोकसभा चुनाव की गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति। आज के संक में आप सुनेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला प्रशासन चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जल्द ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
आदर्श आचार संहिता जो है उसके लागू होने के साथ ही धारा 144 का ऑर्डर भी इशू होता है, वो भी हम लोग अभी इशू करेंगे। कैंडिडेट नॉमिनेशन कर देते हैं तो उनको विधिवत अनुमति लेकर के ही कार्यक्रम करना होता है। तो अभी इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी बैठक करेंगे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव कराएंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव को लेकर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
अगर कोई इस तरह का भ्रामक पोस्ट डालेगा तो उसमें कानूनी प्रावधान है और उसमें जो है FIR दर्ज करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहले से भी इसमें कई प्रावधान बने हुए हैं और अगर इलेक्शन से रिलेटेड किसी मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई दुष्प्रचार करना चाहेगा तो उसमें जो IPC के विभिन्न प्रावधान है, IT एक्ट का प्रावधान है और जो RP एक्ट है, तीनों के तहत कार्रवाई की।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्वीप अभियान के तहत लोकसभा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव कराएंगे। जो मतदान का प्रतिशत है पिछले चुनाव में 61% रहा। स्वीप की गंभीर गतिविधियां जो है बहुत तेजी से हम लोग चला रहे हैं और इसको इंटेंसिफाई करेंगे और स्वीप की गतिविधियों के माध्यम से जो मतदान का प्रतिशत है उसको हम लोग इस बार निश्चित रूप से बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।
मेरा नाम संजना है, मैं मुजफ्फरपुर की निवासी हूं। मैं पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डालूंगी। मैं अपने विवेक से वोट डालकर देश के नेतृत्व में भाग लेने के लिए सांसद को चुनूंगी।
इधर जिले में राजनीतिक दलों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक।
भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई के माध्यम से नकद राशि जमा करने की सुविधा लाने जा रहा है। फिलहाल यूपीआई का इस्तेमाल पैसा निकालने और अंतरित करने के लिए किया जाता है। एक रिपोर्ट।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस सुविधा से उपभोक्ताओं को नकदी जमा कराने में आसानी होगी, जिससे बैंकों की नकदी लेन देन प्रक्रिया और सक्षम होगी। आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान माध्यम पीपीआई वॉलेट से यूपीआई भुगतान के लिए थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया है। इससे उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ेगी और छोटी लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। वहीं इस अवधि में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके सुमन ने बताया कि पटना, गया, बक्सर, मुंगेर, सिवान, सारण, गोपालगंज, कटिहार और भागलपुर समेत 25 जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान लू चलने की आशंका है। इस अवधि में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है।
बिहार के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग में 2 दिनों तक काफी शुष्क बना रहेगा एवं लू का प्रकोप भी हो सकता है। इन क्षेत्रों का आर्द्रता भी काफी कम रहेगी। 3 से 4 दिनों के बाद थोड़ी बूंदाबूंदी राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग में होने की संभावना है।
गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत पलथरी चेकपोस्ट के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 8,000 से अधिक सिम कार्ड बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 18,700 नेपाली रुपए भी बरामद किए गए। सिम कार्ड दिल्ली से तस्करी कर नेपाल ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बिहार समेत 11 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। हरेक पोलिंग बूथ के लिए कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। अगले 3 वर्षों में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और देश में अधिक रोजगार सृजन का वायदा। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल। राजद ने अपने कोटे से 3 लोकसभा सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और पूर्वी चंपारण वीआईपी को दी। और लोकसभा चुनाव के 2रे चरण की 5 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच में 31 नामांकन पत्र रद्द किए गए। इच्छुक उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम ले सकते हैं वापस। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।